ज्ञानचंद्रिका जो कर्मकांड की भाषा टीका है पंडित टोडरमल जी ने लिखी हुई, उसके आधार से और लब्धिसार के आधार से हम ये पांच भावों की चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा था इसको जीव के असाधारण भाव कहने में आते हैं। ये पांच प्रकार के हैं। पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में पाया जाता है, भले वो निगोद हो, अरियंत भगवान हो या सिद्ध भगवान हो। ये तो औदयिक भाव किसके हो गए? सभी संसारी जीवों के हो, क्योंकि वो दत्ति और असिद्धत्व नाम का भाव तो चौदहवें वाले को भी रहता है। तो पहले गुणस्थान से चौदहवें तक पारिणामिक भाव के साथ साथ औदयिक भाव भी होगा। हमने देखा था शावशमिक भाव किसको होगा? सभी छद्मस्थों को होगा ही। अरिहंतों में शावशमिक भाव नहीं होगा, तो पहले गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक सभी जीवों को क्षौक्षमिक भाव होगा, क्योंकि क्षौक्षमिक ज्ञान तो सब में होगा। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये भी क्षौक्षमिक भाव हो गए, दर्शन के भी हो गए, ख्याल आता है ना। तो इस तरह से हमने हर एक गुणस्थान पर भी घटाया था उसको। तो पारिणामिक देखा हमने, औदयिक देखा, क्षौक्षमिक देखा और औपशमिक और क्षायिक। तो औपशमिक भाव किसे होता है? कि जब सबसे पहले किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व में से वो सम्यक तो प्राप्त करता है, तो तब कर्मों का उपशम करके प्राप्त करता है, तो वहां औपशमिक सम्यक तो पाया जाता है। दोबारा जब उपशम श्रेणी चढ़ता है जीव, तो ये चारित्र मोहनीय द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से भी चढ़ेगा या क्षायिक सम्यक्त्व से भी चढ़ेगा, परंतु वहां उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम किया जाता है, तो वहां औपशमिक चारित्र भी पाया जाता है। तो औपशमिक चारित्र कौन सा जीव करेगा? तो द्वितीयोपशम वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ता है या क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसने दर्शन मोहनीय का तो क्षय किया है, परंतु चारित्र मोहनीय का उपशम करते हुए वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो उस जीव को भी वो औपशमिक चारित्र होगा। क्षायिक भाव में हमने देखे थे क्षायिक ज्ञान का ही अर्थ होता है केवल ज्ञान, क्योंकि वहां कर्मों का क्षय रूप अवस्था पाई जाती है। प्रतिपक्षी जो कर्म है पांचों ज्ञानावरण, पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय पाया जाता है, इसलिए केवल ज्ञान को ही क्षायिक ज्ञान कहते हैं। केवल दर्शन को क्षायिक दर्शन कहते हैं। भाषा बदल गई तो कोई दूसरा कोई नया ज्ञान होगा ऐसी बात नहीं है, है ना? क्योंकि हम तो केवल ज्ञान कहने की आदत है, और किसी ने कहे इसको क्षायिक ज्ञान है तो ऐसा लगे ये कौन सा नया ज्ञान आ गया। तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, फिर क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, हर एक के साथ क्षायिक क्षायिक लगाना, ये क्षायिक भाव नौ हमने देखे थे। क्षोभसम की परिभाषा हमने बहुत विस्तार से देखी, हमने देखा था कि जो घाती कर्म है, मूल कर्म के दो भेद, घाती और अघाती। घाती कर्मों में दो प्रकार के घाती प्रकृतियां पाई जाती है, कोई सर्वघाती प्रकृतियां है और कोई देशघाती प्रकृतियां। प्रकृति सर्वघाती हो, सर्वघाती प्रकृति वो वैसे सर्वघाती रहेगी, उसके सभी स्पर्धक यानी सभी परमाणुओं के समूह जो कुछ है वे सर्वघाती ही हो गए। और जो देशघाती प्रकृति है, प्रकृति की बात चले, प्रकृति तो है देशघाती, परंतु उसमें कुछ स्पर्धक तो होते हैं सर्वघाती और कुछ होते हैं देशघाती। अभी जिसका उदय चलेगा वैसा उस जीव का निमित्त बनेगा, यानी वैसा जीव का भाव होगा। यदि देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक का उदय हो जावे तो पूरा ही घात होगा, उसका हमने उदाहरण भी देखा था। अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रकृति है वो देशघाती प्रकृति है, उसमें सर्वघाती भी स्पर्धक होते हैं, देशघाती भी स्पर्धक होते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो तो वहां अवधि ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है, है ना? तो वहां हम कहेंगे ये इसका सर्वघाती का उदय चल रहा है, औदयिक अज्ञान कहेंगे उसको। परंतु क्षोभसम कब कहेंगे कि अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय चलेगा, सर्वघाती है वो देशघाती रूप होकर उदय में आएंगे। सर्वघाती सत्ता में तो पड़े रहेंगे, सत्ता में से जाते नहीं है, परंतु जब उदय आने का काल होता है उस काल में देशघाती होकर उदय में आते। अब देशघाती में भी बहुत अलग 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 डिग्री वाले कर्म होंगे ना, देशघाती कोई एक स्पर्धक नहीं है, देशघाती में भी अनंत स्पर्धक है। कोई बहुत ज्यादा यानी उसमें जो देशघात है तो देशघात यानी थोड़ा घात, तो ज्ञान ज्यादा खुला रहेगा और घात थोड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है, या ज्ञान अल्प खुला है और घात ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं मति ज्ञान हो या श्रुत हो या अवधि हो या मनपर्य हो, उसमें भी किसी का ज्यादा पावरफुल होता है, किसी का थोड़ा कमजोर होता है ना। हमारे भी देखते हैं, हम कोई बहुत बुद्धिमान है, संगी पंचेंद्रियों में ही कोई ज्यादा बुद्धिमान है और कोई कम बुद्धिमान है, हम कहते हैं इसका इंटेलिजेंस कम है, या कोई मतिमंद है तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, फिर भी मतिमंद क्यों है? क्योंकि देशघाती में भी बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, तो उनका आवरण ज्यादा है और जो प्रकट ज्ञान है वो कम प्रकट है। ऐसे अवधि ज्ञान में भी बहुत सारे भेद पाए जाते हैं, अवधि ज्ञान भी असंख्यात प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं, जिसको देशावधि कहते हैं। आपका कहना है स्वाध्याय करते समय कभी कभी बात ख्याल में आती है और कभी कभी ख्याल में नहीं आती है, तो हो सकता है अपना ही उपयोग ही कहीं अन्य चला जाए, अपनी रुचि कहीं अन्यत्र हो, ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि क्षोभसम यानी उतनी जानने की अपनी शक्ति तो है, परंतु उस समय क्यों नहीं आ रहा है? क्षोभसम तो घट नहीं गया है, ख्याल है ना, परंतु अपना उपयोग अन्यत्र चला गया, या उसकी रुचि नहीं हो रही, कोई अन्य विचार चल रहे, ऐसा भी हो सकता है, या क्षोभसम में भी बदघट होती जाती उसमें भी हो सकता है। जैसे आप कहेंगे अभी अभी तो अच्छा था, अभी वो कोई इंजेक्शन दे दिया या एनेस्थेसिया दे दिया, उसका ज्ञान कहाँ चला गया? तो ये जो बाह्य निमित्त बनते हैं उसमें, उसको भी ज्ञानावरण कर्म का नो कर्म कहते हैं, एजेंट। ये नौकर मैंने शरीर मनवाने वाला नौकर में नहीं। जैसे हम क्या अभी साता असाता पर हम भटक करेंगे, साता वेदनी कर्म है उसका उदय चल रहा है, तो उसका कार्य हमने कल क्या देखा, संयोगों में सुख बुद्धि का होना। तो अभी हमें सुख बुद्धि किसमें हो रही है, पंखा चल रहा है उसमें सुख बुद्धि हो रही है। तो ये पंखे का वहां होना ये हम कहेंगे वो साता वेदनीय का वो न कर्म, यानी साता वेदनीय का वो एजेंट है, उसके द्वारा हम सुख बुद्धि कर रहे हैं ना। अभी खाली पंखा है परंतु चालू नहीं है तो हमें दुख बुद्धि हो रही है उसमें। तो बाह्य कोई जो कोई निमित्त है, बाह्य संयोगों में जो कुछ निमित्त बनता है वो उस कर्म का नो कर्म कहने में आता है, कर्म का नो कर्म, यानी उस कर्म की जो फल मिल रहा है उसके लिए बाह्य और अन्य चीजें जो निमित्त है उनको उस कर्म का नो कर्म कहने में आता है। ये तो शास्त्रीय भाषा है, क्योंकि नो कर्म का हमें एक ही अर्थ मालूम है, शरीर मनवानी हमें नो कर्म कहते हैं, या जिसमें जिसमें अपने मेरे पने की बुद्धि हो जाए वो उसको भी नो कर्म कहते हैं, परंतु ये तो कर्मकांड की भाषा है। जैसे असाता में क्या है, तो अभी कोई शरीर का रोग है वो हमारे असाता में, असाता में क्या होता है कि जीव की उसमें दुख बुद्धि होती है, तो अभी उसके दुख रूप परिणाम में कौन निमित्त हो रहा है, शरीर का रोग, तो वो उसका निमित्त हुआ ना, बाह्य निमित्त, तो उसको उस कर्म का नौ कर्म कहने में आता है। ऐसे हर एक कर्म का अलग अलग नौ कर्म कहने में आएंगे। हाँ, अंतरंग निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म की बात चल रही ना, तो ज्ञानावरण कर्म का है। अभी बाह्य में इंजेक्शन दिया या कोई एनेस्थीसिया दिया या जो कुछ है, अभी जो बाह्य अनेक निमित्त बनते हैं, अभी प्रकाश नहीं है तो पढ़ने की शक्ति तो है, आंखें भी अच्छी है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अंधेरा है, तो ये उसका बाह्य निमित्त ऐसा हो जाता है। वहां ज्ञानावरण का क्षोभ भी वहां वैसे उस जाति का रहेगा, परंतु उस जीव की जो संगी पंचेंद्री है उसकी विशिष्ट शक्ति तो वहां मौजूद है। जैसे कोई अंधा है व्यक्ति, तो उसको हम चतुरिंद्रिय कहेंगे क्या पंचेंद्रिय कहेंगे, पंचेंद्रिय, क्योंकि उसका क्षोभ उस जाति का वहां मौजूद है। तो ये पांच भावों पर हम घटित कर रहे थे, उसमें से ये उपशम भाव की भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। क्षोभम की तो हमने हाँ उपयोग भी अन्य अन्य में, पांच इंद्रिया है तो उपयोग भी एक एक इंद्रियों के द्वारा अलग अलग काम करता है ना, एट ए टाइम कोई एक एक काल में उपयोग एक इंद्रियों के विषय के जानने में प्रवृत्त होता है, फिर वो उपयोग वहां से अन्य इंद्रिय में चला जाता है, अन्य इंद्रियों के विषय को जानता है, ऐसे वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तीव्र गति से होता रहता है। हमें ऐसा लगता है हम पांचों इंद्रियों से एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, परंतु हर एक इंद्रियों में उसका उपयोग अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही, परंतु बहुत जल्दी जल्दी, हाँ हमें ऐसा लगता है कि हमें पांचों का एक साथ, हम बोल भी रहे सुन भी रहे सब एक्शन भी कर रहे हैं, हमें क्या लगता है सब एक साथ हो रहा है, अंतर्मुहूर्त उसमें गैप चली जाती है। अब ये जो हमने क्षोभम की परिभाषा घटित की थी, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव, हाँ, तो वही क्षय है, उदयाभावी क्षय कहते, उदय के अभाव रूप क्षय। भविष्य में यानी सत्ता में तो सर्वघाती पड़े हैं, परंतु वो अपनी जगह छोड़कर अभी उदय में नहीं आएंगे, तो कहेंगे उसको भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों, उन्हीं यानी उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, यानी अपनी जगह में रहना उसी को यहां हम सदवस्था रूप उपशम कहेंगे। सत्ता में रहना उसी को सदवस्था रूप उपशम कहेंगे, सत्ता में तो सभी है, परंतु सत्ता में अपनी जगह छोड़कर उसमें उदीर्णा होकर उदय में आ सकते हैं, तो ऐसा न हो इसलिए उसका नाम उपशम रखा है। अकेले सत्ता में रहने से कोई बात नहीं, अपनी जगह छोड़कर न आए ऐसी कंडीशन है ना उसमें, इसलिए उसको सदवस्था रूप उपशम का। कोई ऐसे ऊपर है अभी नीचे, वो तो सत्ता में पड़े हैं परंतु अपनी जगह छोड़कर नीचे आ सकते हैं, तो हम उसको कैसे सदवस्था रूप उपशम कहेंगे, उसको कहेंगे वो उसकी उदीर्णा हो गई। अभी यहां पे तो स्पर्धक नहीं हृदय में आ रहे, कौन से? सर्वघाती। परंतु ऊपर के अपनी जगह छोड़कर वहां आ जाए तो उस पूरा ही घात हो जाएगा, तो क्षोभ घटित होगा ही नहीं, इसलिए उसको सदवस्था रूप उपशम का। और तीसरी बात, उदय किसको चल रहा है? सर्वघाती रूप से उदय नहीं हो रहा है, परंतु सत्ता में है। और जब एक एक नीचे नीचे का एक एक निषेक खिरता जाता है और ऊपर के निषेक नीचे आते हैं, जब उदय के सन्मुख हो गए तो वो देशघाती होकर उदय में आएंगे। तो इसलिए उसको कहते हैं उदय किसका चल रहा है? देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये तीनों ही अवस्थाओं को मिलकर क्षोभशम कहने में आता। जैसे भी कोई एकेंद्रीय जीव है तो एकेंद्रीय जीव को कितना क्षोभशम है? तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षोभशम। तो स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म है ना, हर एक जाति का कर्म अलग अलग। स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उसका उदय चल रहा है। अभी रस वर्तमान में और किस किस का उदय चल रहा है? उदय हो रसना इंद्रियावरण का, सर्वघाती का उदय। घ्राण इंद्रिय वरण का, सर्वघाती का उदय। चक्षु इंद्रियावरण का, सर्वघाती का उदय। यानी उसके रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र मन संबंधी ज्ञान का उदय का ज्ञान चल रहा है, क्योंकि उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। एक इंद्रिय की ज्ञान की शक्ति कितनी है? क्षोभशम कितना है? एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान उसका चल रहा है। तो उसी ज्ञान संबंधी वो स्पर्शन इंद्रियावरण है, उसका क्षोभशम चल रहा है। नहीं क्या? देशघाती का उदय हो रहा है और सर्वघाती पड़े हैं अंदर। सत्ता में से निकले नहीं, सत्ता में तो सभी पड़े हैं। हमारे आपके सत्ता में सभी मति ज्ञानावरण के सर्वघाती पड़े हैं, परंतु उदय हमारा किस रूप से हो रहा है? देशघाती रूप से। जब उदय में आएंगे वो सर्वघातीपना उसका नष्ट हो जाएगा। तो देशघाती का भी उदय हमने देखा था, अलग अलग डिग्री वाले हैं देशघाती में। ज्यादा आवरण होगा तो मति मंद होगी, ज्ञान कम खुलेगा, और आवरण थोड़ा रहेगा तो ज्ञान ज्यादा है, बुद्धिमान है वो जीव, है ना। तो ये मोक्ष मार्ग में जीव लगता है तो उसके ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म, समस्त अप्रशस्त है ने, घाती सभी अप्रशस्त ही है। अघाती में भी हमने देखा था जो जो कोई अप्रशस्त कर्म है उनका अनुभाग प्रति समय हर समय अनंत गुणा घटता चला जाता है। अनंत गुणा घटता है ने, अनंत वाभाग अनंत वाभाग अनंत वाभाग होता चला जाता है। ऐसे ये मिथ्यात्व का भी, चारित्र मोहनी का भी, मिथ्या दृष्टि की ही बात चल रही है ना। सम्यक्त्व के सन्मुख तो मिथ्या दृष्टि ही है ना, उसी की बात चल रही है। तत्व विचार करने लगता है उसकी बात चल रही। तो ये हमने देखा था, एक क्षोभशम की परिभाषा अपने घटित हुई। उपशम होता है यानी क्या होता है इसका थोड़ा हमें अंदाज लेना। जैसे हमने देखा कि मिथ्या तो कर्म का उदय चल रहा है, आठों ही कर्मों का उदय निरंतर है। हमने यहां दो ही कर्मों के ऐसे निषेक लिखे, ये दर्शन मोहनी के निषेक है, ये चारित्र मोहनी के निषेक है। वो बाद में हमको उपशम चारित्र समझाना ना, इसलिए दोनों को यहां लिखा है। ऐसे हरेक कर्म के निषेक अपने अपने हो गए और हरेक कर्म का एक एक निषेक उदय में आ रहा है। ये सत्ता में पड़े हुए की बात, अब ये बंधने वाले की बात नहीं। हमने हर समय कभी न कभी बांधे है उसका उदय चलता है। अभी सत्ता में है ना, तो एक समय में इतने परमाणु खिरेंगे, दूसरे समय में और खिरेंगे सत्ता में, तीसरे और खिरेंगे, तब तक पुराने बंधे हुए और भी उसमें ऐड होते जाएंगे, नए नए बंध भी होगा वो भी इसमें आकर मिलेंगे। तो हर समय अनंत परमाणु खिरेंगे भी, अनंत हम बांधते हैं और पूर्व में बंधे हुए अनंत खिरते भी। तो अनादि से ये मिथ्यात्व कर्म का उदय ऐसा ही चला है। हम हर समय नया मिथ्यात्व भी कर रहे हैं और पुराने पहले बंधा हुआ मिथ्यात्व कर्म का उदय भी हो रहा है। तो वहां कर्म का उदय अभी यहां कहीं छूट है कि हर समय के परमाणु वहां पड़े हैं लाइन से? हर समय में अनंत कर्म परमाणु मिथ्यात्व के उदय में आएंगे, तो यहां मिथ्यात्व करना पड़ेगा ना हमको। यदि निमित्त की तरफ से देखेंगे तो जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब यहां जीव के परिणामों में भी मिथ्यात्व रहेगा। हम उल्टा उधर से बोल रहे हैं ना, निमित्त की तरफ से कथन कर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि थोड़े काल के लिए चुप बैठेगा, उदय में नहीं आएगा, तो ये हो सकता है कि यहाँ कुछ हो जाए। तो अभी हम कर्म में कैसा कुछ करेंगे, ये तो पर सकता है ना, अपने उसमें कुछ नहीं चलता है, अपना कुछ जो चलेगा अपने में चलेगा। तो हम जब तत्व विचार करते हैं, पहले तो तत्व सही तत्व सुनेंगे, जिनेन्द्र कथित जैसे के वैसे, जो कहते हो श्रद्धा, फिर उसमें विचार करेंगे, तत्व विचार करेंगे, तत्व निर्णय तक पहुंचाएंगे। और आज जो बात आई थी इतने विस्तार से कि जैसे जो स्वरूप पहचाना है उसी में एकाग्र हो जाएंगे, तब इन कर्मों में क्या होता है, तो ये इसका उपशम हो जाता है। उपशम होता है यानी क्या होता है, हाँ जब जाता है यानी, हम थोड़ा देखेंगे उसको। नहीं नहीं, वो सब मिक्स कैसे होते हैं कि अभी बांधे हुए उसका आबादा काल चलेगा। देखो जैसे ये पहले बंधे हुए, अभी हमने इस समय नए बंधे बांधे, अभी वर्तमान समय है ना, तो अभी बांधे हुए का आबादा काल, आबादा काल के बाद हमें इतने कर्म करना होगा, मान ले इससे कम हो गए, इससे ज्यादा भी हो सकते नहीं, अधिक हो गए तो ये सत्ता में भी पड़ेगी, उसकी सत्ता की स्थिति बढ़ेगी, या कम बांधे हैं तो ये इसके साथ मिल जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी, ऐसे हर समय उसमें ऐड होने लगेगा, और जब उसका नंबर आएगा तो उसकी भी वो गिरेगी उसके साथ, ये तो हर समय चल रहा है ना। अभी अभी जिसका जो क्रम है, जिस पोजीशन पर, जिस काल में उदय आने योग्य है, उसी काल में जो पहले के रिजेक्ट पड़े हैं उसके साथ वो मिल जाएंगे, उसी के साथ वो उदय में आएंगे,
दोनों का मिलकर बाहर आएगा।
हाँ, जब उदय में आएंगे तो मिलकर उदय में आएंगे। अब यहाँ जीव जब तत्व विचार में लग जाता है, तत्व विचार में लग जाता है, पहले तो प्रोसेस को भी पंचतत्व में डिटेल में पढ़ना, तो हम यहाँ से बताएंगे कि यहाँ तक निषेक थे मान लेते, यहाँ तो उसने तीन कर्म परिणाम आए, अदर लोक कर्म, अपूर्व कर्म, अनिवृत्ति कर्म। उसमें कौन कौन सी बातें होती है, विशुद्धि कैसे करती है, कौन सी प्रक्रिया कैसे होती है, वो समझानी है। ऐसे करते 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 अभी ये जीव यहाँ पर आ गया, ये अनिवृत्ति कर्म भी थोड़ा काल बीत गया उसका, तो क्या होता है, ऊपर के कुछ परमाणु यानी निशे पूरे के पूरे, वो थोड़े थोड़े करके नीचे ऊपर चले गए, यहाँ से परमाणु नीचे के परमाणु मिलते हैं, और अब यह नया बंध भी हो रहा है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पे कुछ परमाणु इसमें भी चले जाए। अभी कैसे चले जाते हैं वो हम विस्तार में नहीं देखेंगे, तो कुछ नीचे आएंगे कुछ ऊपर चले जाएंगे, तो ये बीच में इतनी बड़ी गैप हो जाएगी, जिसको कहते अंतर किया, क्या अभी सम्यक तो होना बाकी है, अभी अनिवृत्ति करण में आया है, सम्यक के पूर्व की करण लगती चल रही है, अभी असंख्या समय बाकी है, अनिवृत्ति करण पूरा अंतर्मुक्त वाला है, एक नशा नहीं है अनिवृत्ति करण, क्योंकि अभी मध्यम से तीन करण जो है उसका तीसरा करण, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें क्या अभी इतने समय उसके बाकी है, इतने ने असंख्यात समय बाकी है, उसके ऊपर के विषय का अभाव हो जाता है, अंतर कर देते, यहाँ कुछ निषेक नहीं रहे, क्या होगा, होगा विषय के लिए परमाणु का समूह लॉस करते, उसमें से कुछ तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे इसकी संख्या बढ़ेगी ना, और कुछ ऊपर चले जाएंगे इसके साथ हो जाएगी, और बीच में अंतर तैयार हो, अब जीव उसकी विशुद्धि बढ़ी रहे, तो ऐसा करते करते एक निशे गया तो कुछ नहीं गया, ऐसे करते करते जब यहां पर जीव आएगा, वो तो तत्व विचार विचार में वो एक
ایک بار ہوتا ہمیں بالکل تلوین ہو گئے, جب اتنے سمے بیت جائے گا یہ نشے سارے کھل کر نکل جائے گی. تب ابھی یہاں پہ کیا ہے, متھیا تو کا نشے کی نہیں ہے ہدے, اور جیو کے بھاؤ میں بھی کیا ہوتا ہے سمے کو کی پراپت, کیونکہ یہاں سمے پر ہوا ہے متھیا تو بھی نہیں ہے, جیو کے بھاؤ میں بھی متھیا تو نہیں ہے اور وہاں سامنے متھیا تو کا ہدے بھی نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا ہدے ہوتا ہے اور یہاں جیو اندر میں گیا اور اس کا سمے سے پہلے ہاں پہلے اندر ہوتا ہے. ابھی اکیلے اندر ہوتا ہے اتنا ہی ہم نے دیکھا نا, ابھی اتنے نشے ہمیں دیکھے اتنے سمے میں وہ اس کا اندر کر گیا. اندر کرنے کے بعد کیا کیا, یہ اوپر جو پرماتما سارے پڑے اندر پورا پوری ساگر کے پرماتما سر پڑے وہ پرماتما اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے تو پھر مٹھا تو ہمیں پڑے گا, پھر کوئی چھوٹنے کا راستہ نہیں ہے. تو ان پرماتموں کو ایک دو تین چار پانچ سمے کر کے اتنی جتنی سمے باقی نا اتنے سمے میں تم جن کو کیا رکھا ہے, تو یہ سارے کرم پرماتموں کو ہے وہیں پر پوشن کیا ہے. کون سے پرماتموں کا پوشن ہوتا ہے, اوپر والا گیپ کے نیچے کو کہتے ہیں پرتھم استھتی, اس کا نام ہے پرتھم استھتی یعنی نیچے والی استھتی, اور گیپ کے اوپر جو ہے اس کو کہتے ہیں دوتیہ استھتی, اور یہ بیچ میں آتا ہے. تو ابھی یہاں کے پرماتم پہلے سمے میں ایک لاٹ اس میں پوشن کیا, دوسرے سمے میں تیسرے سمے میں, یہاں جتنا کال باقی نا اندر اتنے کال میں یہاں ایک ایک نیچے کھیلتا رہے گا اور وہاں کے پرماتم پوشن ہوتے چلے گا. اس طرح سے جب یہاں تک آپ آئیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا لاٹ پوشن ہے, اس میں سے ایک بھی پرماتم نیچے نہیں آ سکتا. اور یہاں آ گئی جی سب اکشم سمے نرمل ایکدم شاید جیسا میں اندر سمے پر, کیونکہ یہاں متھیا تو کا ہدے ہی نہیں, تو یہاں سے لے کر اس کا اکشم سمے تو پرارمبھ ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بار جب ہوتا ہے اوشمک سمے تو ہی ہوتا ہے انادی میں کیا دیکھی جو ہے اس کی بات. اب یہ اکشم سمے تو کے کال میں کیا ہوتا ہے, یہاں تو اکشمک ہوئے پڑے ہیں پرمان سارے متھیا تو کے ہی ہے, کیونکہ انادی کے انادی متھیا دشنی نے متھیا تو کرم باندھا اس کی ستا میں تین کرم تو پہلے ہی. اب یہاں سے لگا کر جو اکشم سمے کا انتر کال ہے اس کال میں کیا ہوتا ہے کہ اکشمک جو پرمان ہے متھیا تو کی بات چلتی اس میں سے متھیا تو کے پرمان کا انوواد انت گنا گھٹ کر سمے متھیا تو پرکتی اور اس سے بھی انت گنا کر کر سمیہ پرکتی تیار. اب یہ ایک پرکتی میں سے یہاں انوواد کی اپیکشا میں تین پرکتی بتائی گئی, اس کو ابھی یہاں اکشن سمے تو شروع ہوا برابر, یہ انتر کتنا کیا ہے وہ بھی انتر ہونے والا ہی ہے, ایک دو تین چار, کیونکہ ایک سمے میں ایک نشے ایسا وہ اندر ہونے والا ہی گیپ کیا ہے. اوپر اکشم ہے اکشم ہے اور اس کا سنکرمن چل رہا ہے, ودھیان میں سے سمے ودھیا کا اور سمے پرکتی کا گننا چل رہا ہے, یہ انواد کا گھٹنا یہاں پر چل رہا ہے اور یہ ایک ماتر ودھیا تو میں ہو رہا ہے. چارتر منی کا ہو گیا گیارہ منی کا ہو گیا یہ سب چل رہا ہے, وہاں پہ ان کرموں میں تو ہدے چل رہا ہے نا.
ہاں میں نے سنا ہے کہ صرف متھیا تو تین کی بات آتی ہے,
آپ کا پرشن ایسا ہے کہیں کہتے کہ آپ کے لیے متھیا کو اوپشن کیا, کہیں کہتے تینوں کو کیا اس کی بات بھی دیکھی, تو یہ تو سمجھ میں ہے نا تین ٹکڑے ہوئے تین ٹکڑے ہوئے کتنے کام میں ابھی ایک ایک سمے بھی کیا رہا ہے. تو ابھی یہ اوپشمک کرنے کا کال اندر ہونے تک ہی اوپشمک لے سکتے, اس سے زیادہ اس پر اوپشمک نہیں لے سکتے, اب وہ اس کا اوپشن چھوٹ جائے گا. اوپشن چھوٹ جانے پر کیا ہوگا, ہدے شروع ہوگا, تو وہاں سے اوپر سے یہ نیچے آ کر کے یہاں نیچے تیار ہوگا.
نہیں
ابھی نیچے آئیں گے, ابھی यहाँ तक तीन टुकड़े हैं, तीन टुकड़ों में से यदि मिथ्यान पर उदय रूप हो जाए, मिथ्यान को नीचे चलाया और ये ऊपर तक चले, तो ये मिथ्यान पुनस्थान हो गए। यदि समय मिथ्या तो कभी उदय हो जाए तो तीसरा पुनस्थान हो जाए, और समय प्रकृति का उदय हो जाए तो उसका क्षोभन समय तो बने, उसके लिए और तीन कर्म परिणाम अलग नहीं माने, उपशम समय तो में से क्षोभन समय तो हो जाए, समय तो चल रहे, उसको नीचे आना ही पड़े, ऐसे कोई उसके लिए कंडीशन नहीं है। अब आपका प्रश्न कि कहीं कहीं तीनों की बात आती है, अभी हम उसकी बात करें। अब कोई जो मिथ्या दृष्टि है, जो सादी मिथ्या दृष्टि, जिसने एक बार ऑप्शन समय को प्राप्त किया है, उसकी कंडीशन क्या है? मिथ्या का उदय हो रहा है, परंतु सत्ता ने अभी मिथ्या के है ना, देखिए हम पहले में पहले जब समय को प्राप्त किया था तब क्या हुआ था उसको देखिए, जब समय को प्राप्त किया ऑप्शन समय को हुआ था तो उसके तीन टुकड़े ऐसे हुए, और जब वो फिर उसका मिथ्या तो में आ गया तो मिथ्या तो का उदय शुरू हो गया, क्योंकि वो परमाणु नीचे आए ऐसे तो इसका उदय शुरू हो गया। अब जब समय तो प्राप्त किया था तो उसने कर्मों की स्थिति कितनी की थी, अंत कोड़ा कोड़े सा, यानी अभी अंत कोड़े कोड़ा कोड़े समान सब की स्थिति थी एक समय। जब मिथ्या तो में आ गया तो क्या हुआ, मिथ्यात्व का बंध शुरू करे, मिथ्यात्व का नया बंध होगा, परंतु ये दो कर्मों की स्थिति तो इतनी रहे, और मिथ्यात्व का नया बंध होगा तो इसकी स्थिति अनेक कोड़ा कोड़े सागरों की हो गई, नया बंध होगा रहेगा, परंतु ये दो कर्म जो है वो उतने ही रहेंगे, और वो क्या होता रहेगा उसमें से वो मिथ्यात्व को होकर उदय में आए, हर समय मिथ्यात्व को होकर उदय में आए, ऐसा चलता रहेगा। तो ये टुकड़े कितने काल तक रहे, असंख्यात वर्षों तक, अंत थोड़ा तो ये सागर के हैं, असंख्यात वर्षों तक उसकी स्थिति बनी रही। अब ऐसी अवस्था में ये तीनों का उपक्षण एक साथ नहीं कर सकते, क्या है, यदि अभी उसको समय को प्राप्त करना है तो अभी लास्ट की थोड़ी सी ये पोजीशन जो है, इतना काल बीतने तक यहां से लेकर यहां जो असंख्यात वर्षों का है, उतने काल तक यदि ये समय को प्राप्त करेगा तो वेदक समय को ही प्राप्त कर सकता है, इतने असंख्यात वर्षों तक उसको दोबारा औक्षम समय को नहीं हो सकता, एक बार औक्षमिक समय को प्राप्त हो जाए उसके बाद वो मिथ्यात्व में भी आता है या वेदक समय दृष्टि में रहता है, परंतु मिथ्यात्व में आता है तो उसको दोबारा उपशम समय को प्राप्त करने के लिए असंख्यात वर्ष जाना चाहिए, इसको कहेंगे वेदक योग्यता, इतने काल तक समय को होता है तो वेदक समय को होगा, वेदक ने शोषण समय को होगा, यानी क्या होगा, मिथ्यात्व का उदय मिलेगा और समय प्रकृति का उदय होने लगेगा, ये वेदक समय को होता है, नहीं उसकी बात अभी नहीं करेगी, वो दो कर्म में हो जाता है, तो ये मिथ्या तो फिर से समय प्रवृत्ति हो। अब मान लेते हैं इतने काल तक समय तो हुआ भी छुटा भी या नहीं भी हुआ कुछ भी हुआ, तो आस्ते आस्ते क्या होता है उसका इतनी ही काल बाकी है, करीबन एक सागर के आसपास काल इतना बाकी रहा इन प्रवृत्तियों की स्थिति, मिथ्या तो हुआ है क्योंकि मिथ्या तो मिथ्या दिखे तो उसका नया मानता भी है, तो क्या पोजिशन है, समय मिथ्या और समय प्रकृति एक सागर के आसपास इतनी उसकी स्थिति, अब वो यहां पर उपशम कर सकता है तीनों का एक साथ, अब तीनों का उपशम एक साथ करेगा, मैं बता रही थी इसको भी बड़ा करना, अब यदि वो उपशम इस समय पर करता है तो तीनों को एक साथ उपशम आएगा, इसके पहले तीनों को एक साथ नहीं उपशम आ सकता, उसके पहले वेदक समय औक्षण समय को तो प्राप्त करने की योग्यता थी उसको, परंतु औक्षणिक समय को उसको कभी नहीं हो सकता, तो एक बार औक्षणिक समय को होकर दूसरी बार औक्षणिक ऐसा ऑप्शन समय को कोई जीव अधिक से अधिक प्राप्त करे कितनी बार हो सकता है ना, एक बार हुआ, दो बार हुआ, दो बार होने के बीच में इतना काल चला जाता है, तो अधिक से अधिक कोई जीव प्राप्त करता है ऑप्शन इस समय को। वेदक समय को तो बहुत बार होता है, छुटता भी है होता भी है, तो ये भी बल्ले के असंख्या में बार बार हो सकता है, क्योंकि हमने देखा एक बार समय को होकर अधिक से अधिक कितने काल का संसार में मिलता है, तो उतने काल में इतनी बार हो सकता है उसके असंख्या तो बार औक्षमिक समय, और एक बार औक्षम होकर दूसरे बार औक्षम होने के लिए इतना काल बीच में चला जाता है।
किसी को डायरेक्ट
नहीं, किसी को मिथ्यात अवस्था में से तो क्षायिक समय तो होता ही नहीं है, और औक्षमिक में से भी क्षायिक डायरेक्ट नहीं होता, तो क्या होता है, तो क्षोक्ष में से होगा। अभी हम यहाँ क्षोक्ष समय दृष्टि की पोजिशन बताए, क्षोक्ष समय दृष्टि की अभी सत्ता ने तीन रूप दिया है और उदय समय में उनकी का चल पर, अब ये जो तीन कर्म मानता है, अभी यहाँ हमने आनंदानंद की बात नहीं बताई, परंतु शुरू समझ आनंदानंद को पहले भी सही मेन करेगा, फिर क्या होगा, मिथ्या के परमाणु सारे जो है वो समय मिथ्या करो और समय प्रवृत्ति रूप हो जाए, और एक अंतर मंत्र है ये समय मिथ्या के है वो भी सारे समय प्रवृत्ति रूप एक अंतर मंत्र, और क्या होगा इसको कहते हैं अवदर्शन, ये बहुत बड़े बड़े ऐसे समूह के लॉस के लॉस ऐसे नीचे आएंगे और खिल जाएंगे, और अंतर मंत्र में ये भी नष्ट, तो सब मिलकर के अंदर मुख में ये कार्य है, तो ये इस तरह से उसको शायद समय दृष्टि हो जाता है, सत्ता में से अब पूर्ण रूप से मिल जाता
है। देखो आपका ऐसा प्रश्न है, उपशम सम्यक दर्शन होता है तो नियम से गिरता ही है कि अक्षोपशम भी हो सकता है। उपशम समय दृष्टि को चार रास्ते हैं, हमने पहले देखा ना, उपशम होने के बाद जब उसका उदय आता है ऊपर से नीचे आते हैं, वो उपशम काल पूरा होने के पहले यदि किसी के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय हो जावे तो वो सासादन गुणस्थान में आता है, दूसरा गुणस्थान। यानी उपशम सम्यक्त का काल कितना है हमने देखा, इतना बड़ा काल है मान लेते हैं, यहां से यहां तक ये उपशम सम्यक्त्व का काल हम मान लेते हैं। अभी उपशम सम्यक्त्व चालू रहता तो यहां तक रहता, अभी उसके एक समय पहले या छह अवले पहले तक अनंतानुबंधी का उदय हो जावे तो अनंतानुबंधी में वो गैप नहीं किया है, अनंतानुबंधी ऐसा ही दब गया है जिसको हम सदवस्था रूप उपशम कहते हैं, उसमें वो गैप वाला उपशम नहीं हुआ है, इसलिए वो इतना काल जाने के बाद ये छह अवली तक के काल में उदय में आ सकता है। उसका उदय हो जाए तो उपशम तो उसका सम्यक तो छूट गया, उपशम का काल चल रहा है परंतु सम्यक तो छूट गया, अब यहां से वो सम्यक तो छूट गया, उसका दूसरा गुणस्थान चालू हो गया, कब तक, जब यहां इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो मिथ्यात्व का उदय भी शुरू हो जाएगा और वो मिथ्यात्व गुणस्थान में चला जाएगा। यानी वो दूसरे गुणस्थान का काल कितना है, अधिक से अधिक छह अवधि, कम से कम एक समय, ये उसका दूसरा गुणस्थान
नियम से पहले में ही जाता
है। हाँ, दूसरा नियम से पहले में ही जाता है, वो तो उसका गमन नीचे की ओर ही होता है, दूसरे गुणस्थान वाले गिरने का गुणस्थान ही है, बस वो कितने पहले वो छूटा है समय को उतना ही उसका सासादन का काल है, वो नियम से उसका मिथ्यात्व का ही उदय होगा। तो ये एक रास्ता हुआ उपशम समय का, एक है कि वो मिथ्यात्व में ही गिर जावे, ये दूसरा रास्ता, उपशम समय का काल होने पर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो जावे तो मिथ्यात्व में जाएगा, मिश्र का उदय हो जावे तो तीसरा गुणस्थान में चला जाएगा, और सम्यक प्रकृति का उदय हो गए तो जो कुछ उसका चौथा पांचवा चढ़ा जाता जो कोई गुणस्थान है वही उसका चालू रहेगा। ऐसे ये चार रस्ते, या तो सासादन या पहला या तीसरा या जो है गुणस्थान, समय तो उसका बना रहेगा, उपशोपशम समय दृष्टि होगा। उपशम सम्यक तो कोई तरत इमीडिएट गिरेगा, कुछ काल के बाद भी वो वेदक समय दृष्टि होकर भी गिर सकता है। शासाधन में जाता है वो तो नीचे जाता ही है, वो कितने पहले आया है उतने काल तक शासाधन में रहेगा। कोई चार आवली पहले आया है तो चार आवली उसका काल होगा, छह आवली पहले जो शासाधन में आया है वो छह आवली तक शासाधन में रहेगा, एक समय पूर्व जो आया है वो एक समय तक शासाधन में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा छह आवली, उससे ज्यादा नहीं। हाँ वो एक आवलिया ने असंख्यात समय, अभी छह आवलिया ने और ज्यादा है। ख्याल है, यानी एक बार उपशम समय तो होकर छूटता है तो असंख्यात वर्षों तक वो अगर प्राप्त करेगा तो वेदक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। अभी जैसे हम देखते हैं अभी नरक में कौन सा सम्यक तो होता होगा, सातवें नरक में वेदक भी हो सकता है औपशमिक भी हो, प्रथम औपशम भी हो सकता है, अनादिगा मिथ्या दृष्टि भी वहां जाके सम्यक तो पहली बार भी प्राप्त कर सकता है। और कहीं कहीं किसी शास्त्र में ऐसा भी आता है कि जब सबसे पहली बार औपशमिक सम्यक तो होता है तो गिरता ही है, ऐसा ये अमित गति आचार्य वगैरह दो तीन आचार्य ने ऐसा लिखा है, वो अन्नगार धर्मामृत में भी ऐसा आता है, तो ऐसे भी शास्त्र के उद्धरण मिलते हैं। परंतु वो तो केवल ज्ञानी का विषय है जानने का, ख्याल है ना, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं कहेंगे हमको वेदक सम्यक तो हुआ है कि औपशमिक हुआ है और पहली बार हुआ है कि असंख्यात बार हुआ है, ख्याल है ना? हमें हमारा भी असंख्यात बार होकर छूटा होगा पूर्व हमें, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता तो हम ऐसा भी देखते हैं कि ये तीर्यंचों में भी सम्मूर्छन तीर्यंच, प्रथम उपशम सम्यक तो गर्भजों में ही होता है, परंतु जो सम्मूर्छन तीर्यंच है बड़े बड़े मत्स्य है तो वो पांचवें गुणस्थान में प्राप्त कर सकते हैं, तो उनमें तो प्रथम उपशम होता नहीं है, उनमें ये वेदक होता है सीधा डायरेक्ट वेदक सम्यक, मिथ्यात्व तो में से वेदक सम्यक करके चौथे में या पांचवें में चले जाते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए वेदक सम्यक होने के लिए, क्योंकि जिसके सत्ता में तीन प्रकृति है। सम्मूर्छन तीर्यंच को क्यों लिया यहां, गर्भज तीर्यंच है वो तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, परंतु वेदक सम्यक तो अभी उसके लिए इतना ये सारे पांच लब्धि है वो उसकी सारी की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वहां विशुद्धि यथायोग्य बढ़ेगी। परंतु हमने जो तीन प्रकृतियां देखी थी ना उसमें, तो विशिष्ट विशुद्धि होकर सम्यक प्रकृति का उदय चालू हो जाता है और बाकी दो प्रकृति पड़ी रहती सत्ता में, तो उसको वेदक सम्यक तो हो सकता है एक अंतर्मूर्त में, पांचवा गुणस्थान भी प्राप्त कर सकता है। ये गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार आता है, स्वयं ब्रह्मण समुद्र में ऐसे ऐसे महामत्स्य है असंख्यात है, पांचवें गुणस्थान वर्ती है, सम्मूर्छन है। अभी वहां तो कोई उपदेश देने के लिए नहीं जाता है, परंतु वो पहले एक सादी मिथ्यादृष्टि है तो उनकी विशिष्ट विशुद्धि से वहां वो होता है ना, अंतर्मुख परिणाम हो जाते हैं, सादी ही होते ऐसी नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि भी होगी वहां। एक बार जिसका प्राप्त होकर छूटा है उसको हम सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे, और जिसने एक बार भी नहीं प्राप्त किया उसको अनादि कहेंगे, और जो सादी है परंतु जिनकी तीन प्रकृतियों में से वो तो बहुत काल बीत जाता तो क्या होता है, अन्य दो प्रकृति समाप्त हो जाती है, उसकी उद्वेल ना होती, उल्टा संक्रमण होता है। अभी हमने देखा था ना एक सागर जितना रह गया था तभी भी किसी ने सम्यक को नहीं प्राप्त किया, तो क्या होगा, वो दो प्रकृति है उसका उल्टा संक्रमण होता है, मिथ्या तो रूप हो जाती है, क्योंकि समझो उतने काल में जीव एकेंद्रीय में रहा है अन्य मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कहीं भी रहा किसी भी पर्याय में, तो उसका उल्टा संक्रमण हो जाता है, उसको उद्वेल ना कहते। हाँ बहुत छोटा काल है वो तो, ये असंख्यात वर्षों में हो जाता है ना, तो वो अनादि जैसा हो गया, उसके तीन थे प्रकृति, तीन प्रकृतियां थी ना, अब मिथ्या तो में लंबे काल तक आ गया हो तो मिथ्या तो प्रकृति तो उसकी ये बड़ी हो गई, बहुत बड़ी, और बाकी दो छोटी है। अब ये जो दो प्रकृतियां हैं वो मिथ्या तो रूप हो गई टर्न, मिथ्या तो में से बनी थी, अब वो मिथ्यात्व में परिवर्तित हो गई, तो अनादि जैसा हो गया ना, वो अनादि मिथ्या दृष्टि में जैसा एक ही मिथ्यात्व प्रकृति है वैसे वो फिर बन गया। नहीं नहीं नहीं, अनादि सादी मिथ्या दृष्टि को भी नया मिथ्यात्व जो है वो सत्तर कोड़ा कोड़ी का भी बन सकता है। अभी वो जैसे परिणाम करेगा, कितना बंद होगा उसके अपने परिणाम के अनुसार। ही नहीं, एक बार सम्यक तो होकर छूटता है तो मिथ्यात्व तो में गया हुआ, तो अधिक से अधिक काल उसका कितना घूम सकता है कि जिसके बाद उसको मोक्ष जाना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन काल, जो अनंत काल है, वो अनंत काल है। हाँ, उसमें कितने ही अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाती, इतना अनंत काल है, वो बड़ा है बहुत, फिर भी एक बार उसने प्राप्त किया है तो भी उसको अनेक परिवर्तन, जो हमारे द्रव्य परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन हमने अनंत बार किए हैं, अभी वो उसके नहीं रहेंगे, इतना लंबा काल नहीं रहेगा।
लिमिटेशन
अनंत में भी लिमिटेशन आ गए। अभी समय हो चुका, लो भगवान महावीर की।